मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 22 अगस्त 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 11 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं नरेंद्र सिंह मुरैना मध्य प्रदेश से, दीपक कुमार डेहरी ओन सोन बिहार से, फिर दीपक कुमार हैं आप शिलांग मेघालय से, राकेश रंजन आप मिसरौली बिहार से, सौरभ पटेल रायबरेली उत्तर प्रदेश से, राजीव कुमार गदरिया पूर्वा उत्तर प्रदेश से, प्रीतम कुमार बेंगलोर से, हिमांशु मिश्रा भिलाई छत्तीसगढ़ से, वैष्णवी साहू भिलाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत कुमार सिन्हा गया बिहार से और आशुतोष देशमुख बालाघाट मध्य प्रदेश से। तो नरेंद्र, दीपक, फिर से दीपक, राकेश, सौरभ, राजीव, प्रीतम, हिमांशु, वैष्णवी, रंजीत और आशुतोष आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों अब मैं थोड़ी सी आपको सूचना दे दूं आज के मुख्य विषय के बारे में। और आज मैं आपसे थोड़ी सी सॉइल के बारे में बात करूंगा, मिट्टी के बारे में बात करूंगा, मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में बात करूंगा, मिट्टी की उपयोगिता के बारे में बात करूंगा और इस पर मैं क्यों बात करूंगा इसे अभी आप थोड़ी देर में समझ लेंगे। लेकिन आइए इससे पहले हम थोड़ी सी जो मुख्य खबरें हैं उनके बारे में जान लें, और बावजूद इसके भी कि बहुत ज्यादा मुख्य खबरें हैं नहीं, एक जो खबर थी फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना होगा रेडियो न्यूज में कि प्रधानमंत्री जो है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उनको उन्होंने रिव्यू किया है अपने चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ करके, अपने स्टेट के जो उनके अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, और इस पर थोड़ी बहुत उन्होंने बातें की हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा स्पेशली सिविल सर्विस की दृष्टि से कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और यदि उस योजना का संबंध समाज कल्याण से है, अर्थव्यवस्था से है, आर्थिक विकास से है, कहने का मतलब है, या किसानों से है, कृषि क्षेत्र से है, तब उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। होता क्या है कि मैंने ये महसूस किया है कि हमारे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो खूब मेहनत करते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं ना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए सुनने में भी ये बहुत सरल से लगते हैं, तो इन पर फिर वो बहुत ही तथ्यात्मक तैयारी नहीं करते हैं। और इसीलिए मुझे लगा कि आज मुझे मिट्टी की जो गुणवत्ता है इस विषय को लेना चाहिए, और इस विषय को मैंने ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तहत से ही के अंतर्गत से ही लिया है, तो मैंने इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया है जिसे आप एक तरह से हमारे यहां जो खेती की अभी समस्या है उससे जोड़कर देख सकते हैं। तो मित्रों ये जो दोनों टॉपिक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये दोनों सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, और मैं रिपीट करूंगा कि बहुत तथ्यात्मक तैयारी होनी चाहिए। देखिए जब मैं कहता हूं बहुत अच्छी तैयारी तो मतलब क्या होता है, मतलब यही होता है कि आपके पास तथ्य होने चाहिए, कुछ आंकड़े होने चाहिए, कुछ इसके जो मूल जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो महत्वपूर्ण हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, इसकी क्या खामियां हैं, कौन कौन सी कमियां दिखाई दे रही हैं वो होनी चाहिए, उनके लिए सरकार और आगे क्या कर रही है वो होने चाहिए, इससे अभी तक क्या फायदे हुए हैं, मतलब एक रिव्यू, वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। भले ही आपके पास जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इसके एक एक दो दो पॉइंट ही क्यों ना हो, वही अपने आप में सफिशियंट होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन वो होने चाहिए। लेकिन चूंकि विषय हमें बड़ा सरल सा लगता है, और विषय सरल सा है भी, तो हम बहुत अच्छी तैयारी नहीं करते, और हमें लगता है कि हम लिख करके आ जाएंगे, और हम लिख करके आ भी जाते हैं, लेकिन आश्चर्य तब होता है जब हम अपनी मार्कशीट देखते हैं कि इसमें तो नंबर ही नहीं मिले, उसका कारण यही होता है कि हमने सुपरफिशियल चीजें लिखी हैं, अपनी बहुत ही ऊपरी जानकारी के आधार पर चीजें लिख दी हैं, उसमें बहुत अच्छे तथ्य, कंटेंट और तर्क हमने नहीं दिए हैं। और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो योजना पत्रिका है और कुरुक्षेत्र पत्रिका है, उसके लेख आपके इस तरह की तैयारी कराने के लिए आप यूं कह लीजिए कि बिल्कुल रामबाण लेख की तरह है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेख उसमें छपते हैं जो हम लोग आपको सैटरडे को प्रोवाइड भी करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा और वह है फ्रेंड्स करंट कंटेंट की। मुझे नहीं मालूम कि आप सबको जो डेली एक करंट कंटेंट दिया जाता है उसके प्रति आप कितने गंभीर हैं, उनको कितनी गंभीरता से लेते हैं, उनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप नोट करते हैं या नहीं करते हैं, जो बहुत अच्छे करंट कंटेंट लगते हैं उनको आप अपने पास रख लेते हैं या नहीं रख लेते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यदि आप सतर्कता के साथ करंट कंटेंट को देख रहे होंगे तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान है कि कुछ ही दिनों पहले अभी हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर एक करंट कंटेंट डाला है और उसमें ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो फसल बीमा योजना है, मतलब यूं कह लीजिए कि किसानों को उतना फायदा नहीं पहुंचा पा रही है, उसकी क्या सीमाएं हैं, उसमें क्या क्या संकट आ रहे हैं, तो वो संकट आपको मालूम होने चाहिए, तब आपकी तैयारी को तथ्यात्मक तैयारी कहा जा सकेगा। मित्रों सच पूछे तो न्यूज में यही एक महत्वपूर्ण न्यूज है। दूसरी न्यूज के रूप में आप देखेंगे कि अभी गुजरात में जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं कुछ सीटों के लिए, जिसमें हमारे यहां से अमित शाह जी चुन करके आए, अहमद पटेल चुन करके आए और आपके स्मृति ईरानी जी भी चुन करके आई, तो इसमें एक कांग्रेस से अहमद पटेल जी चुन करके आई और ये दो भारतीय जनता पार्टी से चुन करके आए। उस समय जितना भी संकट हुआ उस चुनाव को लेकर के, उससे आप बहुत अच्छे तरह से परिचित हैं। अब ये जो मामला है ये कोर्ट में चला गया है क्योंकि दो वोट जो रद्द किए गए थे उसको लेकर ये मामला गया हुआ है। राज्यसभा के चुनाव में पहली बार मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा जद्दोजहद दिखाई दे रही होगी और मामला कोर्ट तक पहुंचा। आप देखिए कि कोर्ट क्या डिसीजन देता है। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहां से हम सिविल सर्विस के लिए क्वेश्चन निकालते हैं, मैं आज आपको इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, विनर टैक्स ऑल इस टाइटल से है वो एडिटोरियल कमेंट है। इस एडिटोरियल कमेंट में बेसिकली जो संपादकीय लिखा गया है वह हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं ओपी रावत जी एक कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने कुछ बातें चुनाव के बारे में कही, चुनाव सुधार के बारे में कही है ना, उसमें से उनकी कुछ बातों को लेकर के और उस पर यह एडिटोरियल कमेंट किया गया है, इंग्लिश में है। मैं आपको उनके केवल कमेंट आपको थोड़े से बता देता हूं। उन्होंने ये कहा है कि आजकल, मैं उनके शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं उनके भाव का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि आजकल जो है चुनाव जीतना ही सब कुछ हो गया है, फिर चाहे उसमें नैतिकता की बात हो या ना हो, यानी कि चुनाव में जो एथिकल कंसिडरेशन है वो बिल्कुल खत्म से हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। फिर उन्होंने ये बात कही कि चुनाव के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाना है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट या इलेक्शन मैनेजमेंट कह लीजिए, कि चुनाव को मैनेज किया जाता है। ठीक है, चलिए, व्यवस्था अगर मैनेज व्यवस्था तक सीमित है तो कोई गड़बड़ नहीं, गलत बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या निकाले जाने लगा है कि जो वोट डालने वाले विधायक हैं, सांसद हैं, उनको डराया धमकाया जाए, उनको प्रलोभन दिया जाए, पैसा दिया जाए और इस तरीके से किसी भी हालत में चुनाव को जीता जाए, तो इसे कहा जाता है स्मार्ट पॉलिटिकल मैनेजमेंट। सफलता मिल गई तो कहा जाएगा कि इसने कितना अच्छे तरीके से मैनेज किया। और इसमें दूसरी चीजें भी उन्होंने कही हैं, जैसे कि आप उन्हें पैसा दीजिए, अपने जो राजनीतिक जो विरोधी हैं उनको आप धमकाइए, और जो ये सब कर पाता है उसे फिर कहा जाता है कि ये बहुत ही रिसोर्सफुल है, मतलब उसकी तारीफ की जाती है। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि आज चुनाव में ये हो गया है कि किसी भी हालत में चुनाव जीता जाए और इसके लिए अगर कुछ भी करना पड़ता है तो कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है। ये बात उन्होंने वहां कही है, मैंने उसका थोड़ा सा विश्लेषण कर दिया है, मैंने लंबे उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, विश्लेषण तो नहीं एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। तो मित्रों वो ये एडिटोरियल कमेंट आप देखिएगा, चूंकि चुनाव आपके सिविल सर्विस के की तैयारी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इस पर आप लोग थोड़ा सा विचार भी कर सकते हैं कि कितना सही है कितना गलत है, बेहतर होगा कि इस पर एक छोटी सी टिप्पणी अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करें। मित्रों न्यूज़पेपर्स से फिर मैं कुछ और आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो क्लिपिंग्स आप सब देख लेंगे। अब जितना भी वक्त बचा है उसमें मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करने जा रहा हूं मिट्टी के ऊपर। अभी मैंने आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताया था, सॉइल हेल्थ कार्ड, जो अभी जो नई सरकार है इसने 2015 फरवरी 2015 में इसकी शुरुआत की थी, और अभी जब उसको रिव्यू किया गया है तो जुलाई 2017 तक ये है कि लगभग 9 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं, और जो लक्ष्य रखा गया है वो है कि 2017-18 तक जो कुल 14 करोड़ किसानों को मृदा कार्ड दे दिए जाएंगे। और इसमें अच्छी बात यह है कि 16 राज्यों ने तो अपने लक्ष्य को पूरी तरह हासिल भी कर लिया है। अब आप देखिए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है देखिए बहुत ही सिंपल सा, जैसे कि मान लीजिए मेरे हेल्थ का एक रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि कितना ब्लड प्रेशर है, कितना वेट है, कितना ब्लड के पूरे टेस्ट है, उनकी क्या स्थिति है, हार्ट की क्या सिचुएशन है, तो उसमें पूरी की पूरी सिचुएशन है, ताकि उसी के हिसाब से फिर डाइट चीजें, डाइट को सजेस्ट किया जा सके, लाइफ स्टाइल सजेस्ट की जा सके, बीमारियां सजेस्ट की जा सके, और आगे कभी कोई बड़ा संकट पैदा हो तो उस बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया जा सके, क्योंकि सारा का सारा रिकॉर्ड डॉक्टर के पास होगा। तो यह एक तरीके से मिट्टी का स्वास्थ्य का, मिट्टी का उसी तरह का रिकॉर्ड है, यानी कि इसमें अम्ल कितने हैं, क्षार कितने हैं, ह्यूमस कितनी है, दूसरी चीजें कितनी है, रेत कितनी है, जितनी भी चीजें होती हैं इस मिट्टी की क्या क्वालिटी है। और यह इसलिए किया गया है ताकि क्वालिटी को देखते हुए फिर उसमें यह बताया जाए कि इसमें कौन सी फसल बोई जा सकती है, इसमें कितनी रासायनिक खाद डाल, कितना रासायनिक खाद डाला जा सकता है, ताकि फसल भी ठीक हो सके, अनावश्यक रूप से ज्यादा खाद भी न डालनी पड़े। क्योंकि देखिए जब अनावश्यक रूप से ज्यादा खाद डालते हैं तो दो संकट पैदा होते हैं। नंबर एक, ज्यादा खाद की वजह से उसकी लागत बढ़ रही है, किसान खाद तो खरीदेगा तो जबरदस्ती के उसकी लागत बढ़ रही है, और दूसरा यह कि रासायनिक खादों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, बहुत ही ज्यादा घटती जा रही है। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, और ये आंकड़ा थोड़ा सा चौंकाने वाला भी है कि जब 1960-65 के आसपास हमारे यहाँ रासायनिक खादों का चलन शुरू हुआ और ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फिर इसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है, उस समय तक ये देखा गया था कि अगर किसी उपज में, किसी जमीन में या उपज में 1 किलो रासायनिक खाद डाल दिया जाए, 1 किलो, तो उससे उपज में जो पैदावार होती थी लगभग 25 किलो की वृद्धि हो जाती थी। 1 किलो रासायनिक खाद से 25 किलो खाद्यान्न की वृद्धि। आगे जाकर के क्या हुआ कि 1975 तक पहुंचते पहुंचते, यानी कि 10-15 सालों में स्थिति यह हो गई कि 1 किलो खाद के इस्तेमाल से जो खाद्यान्न में वृद्धि हो रही है वह 15 किलो रह गई, 25 किलो से घट करके 15 किलो रह गई। और अब 2014 में जब फिर से उसे देखा गया, बीच बीच में भी देखा गया है, तो हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें वह 4 किलो रह गई, 4 kg। सोचिए कि 1960-65 के आसपास 1 किलो खाद के इस्तेमाल से हम 25 किलो अधिक अनाज पैदा करते थे, और अब हम 1 किलो खाद के इस्तेमाल से सिर्फ 4 किलो अनाज पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, जो उपजाऊपन है, वो बेहद कम हुआ है केवल खाद के इस्तेमाल से, कि लगातार हम खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो मिट्टी की जो अपनी स्वाभाविक जो नैसर्गिक जो प्रवृत्ति होती है, या कह लीजिए गुण होते हैं, वो गुण गायब होते चले जा रहे हैं। और उससे अब जब से मृदा कार्ड बना है, अब आप देखिए कि रिव्यू कैसे होता है, जब आपके पास कंटेंट होंगे तब आप अपनी बात को ज्यादा सॉलिड तरीके से कह पाएंगे। उसमें फिर हमारे पास एक बड़े खूबसूरत डेटा है, और डेटा ये है फ्रेंड्स कि 15-16-2015 में इसे शुरू किया गया स्वास्थ्य कार्ड, उसके बाद के परिणाम होंगे, उसके पहले को आप तुलना के लिए रख लीजिए। तो 2016-17 में ये देखा गया कि जो रासायनिक खाद थे उनकी खपत में लगभग 8-10% की कमी आई, और आप देख रहे हैं कि सरकार जो कंपोस्ट खाद है, जो जैविक खाद है, उसका कितना प्रचार कर रही है। टीवी पर आप देखते हैं कि नीम कोटेड यूरिया का प्रचार हो रहा है, सरकार बहुत कोशिश में लगी हुई है, जगह जगह कंपोस्ट खाद बनाने के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जैविक खाद इस्तेमाल की बात की जा रही है, ऑर्गेनिक फूड का प्रचार किया जा रहा है। तो इससे एक अच्छा इसके एक अच्छे परिणाम ये दिखाई तो दे रहे हैं, जो कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल 8-10% कम हुआ। लेकिन जो सबसे उत्साहजनक बात है वो ये है कि इसके बावजूद रासायनिक खाद के इस्तेमाल को हमने 8-10% कम कर दिया, लेकिन जो खाद्यान्न उत्पादन है वो लगभग 12% बढ़ गया। 12% बढ़ गया, ऐसा नहीं कि फिर हमने खाद का उपयोग नहीं किया, उसको हमने दूसरे खाद से रिप्लेस किया जिसे कंपोस्ट खाद कहेंगे, और जो हमारे देसी जो स्टाइल होती है उसको हमने अपनाया। तो दोस्तों अब आप देखें कि किस तरीके से जो मिट्टी की जो स्वाभाविक गुणवत्ता है जो पहले समय में थी वो न केवल हमारी उत्पादकता को ही बढ़ाती है, बल्कि जो खाने की जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसका अपना जो स्वाद है वह उसे भी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हुआ क्या कि 60-65 के बाद जब खाद्यान्न अधिक से अधिक पैदा करने की बात आई तो किसानों ने भी जो एक हमारी परंपरागत फसलें होती थी जमीन पर, उन परंपरागत फसलों को न बो करके जिससे ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा बाजार में जिसकी कीमत मिलेगी, वो उन्होंने बोना शुरू कर दिया। और इसी का नतीजा था कि आप देखिए कि साउथ में गेहूं बोया जाने लगा, पंजाब में आप जाकर के देखिए तो चावल बोया जाने लगा, पंजाब में नहीं तो मक्का की खेती सर्वोत्तम होती थी, लेकिन वो सब चीजें गायब हो गई। फिर हुआ ये कि धीरे धीरे ये भी हुआ कि जो दलहन है, जो तिलहन है, ये कहा जाने लगा कि इनको जो जरा कम उपजाऊ जमीन है उस पर बोया जाए, क्योंकि इसमें इतनी ताकत होती है कि कम उपजाऊ जमीन में भी होती चली जाती है। पशु चारे के लिए जो खेती होती थी उसको हमने खत्म कर दिया, जबकि जो दलहन तिलहन होते हैं और जो पशु जो चारा होता है इनमें अपने आप में खाद बनने की क्षमता होती है, इनकी जड़ों में इतनी ताकत होती है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ये वापस ला देते हैं, हमने उनको खत्म कर दिया। और उसका नतीजा है वो कि हम पूरी तरह से रासायनिक खादों पर डिपेंडेंट हो गए और हमारी जो मिट्टी है वो लगातार अनुर्वरक होती चली गई है। तो मित्रों ये मैंने थोड़ी सी बातें आपको मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में आपको बताई है, और यह एक ऐसा टॉपिक है मुझे लगता है कि जिसके बारे में आपकी जानकारी होनी ही चाहिए। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर जो ईमेल का चरण है, तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं। चमकौर सिंह नानक सर पंजाब से हैं, अशोक कुमार हरदोई उत्तर प्रदेश से, मानस झा पूर्णिया बिहार से, विघ्नेश्वरन तमिलनाडु से, सोनू कुमार केशरी, नफीस अहमद गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, प्रभाकर पांडे दुर्गापुर से, सोहन कुमार ठाकुर दरभंगा बिहार से, और बालाकृष्णन महाराष्ट्र से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।